लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानव जीवन का हर लम्हा यादगारी का एक क्षण है। हम अपने जीवन की यादों को जिंदा बनाए रखने हेतु प्रेम से भरे आनंदमय क्षणों को एक खास यादगारी, त्योहार या महोत्सव स्वरूप मनाते हैं। हमारे जीवन के ऐसे लम्हे हमारे लिए कृतज्ञता भरे क्षण होते हैं, जो हमारे हृदय को विशेष सुकून से भर देते हैं। हमारे जीवन के उन विशेष परिस्थितियों में अतीत की उन बातों की याद करना और उन चीजों को दोहराना हमारे जीवन को नई ताजगी से भर देता है। यह हमें अपने जीवन में अपनों के द्वारा और अपने इर्द गिर्द रहने वालों के सानिध्य में हमें अद्वितीय ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति से सराबोर करता है। श्रोताओ, आज हम मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्रतम शरीर और लहू का महोत्सव मनाते हैं। आज की आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम जीवन की यादगारी और उस यादगारी में निहित ईश्वरीय प्रेम को देखने, उस पर चिंतन करते हुए अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करने हेतु बुलाए जाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवनदायी वचनों को सुने और उनके द्वारा मिलने वाले संदेश पर चिंतन करें।
ईसा ने लोगों का स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को चंगा किया। अब दिन ढलने लगा था, बारहों ने उनके पास आकर कहा, लोगों को विदा कर दीजिए, जिससे वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर रहने और खाने का प्रबंध कर सकें। यहाँ तो हम लोग निर्जन स्थान में हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दो। उन्होंने कहा, हमारे पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम स्वयं जाकर उन सबों के लिए खाना खरीदें? वहाँ लगभग 5,000 पुरुष थे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, 50-50 करके उन्हें बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब ईसा ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली, स्वर्ग की ओर आँखें उठाकर उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए, ताकि वे उन्हें लोगों में बांट दें। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए।
श्रोताओ, प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवंत वचन हमें संवेदनशीलता में बढ़ने हेतु मदद करे, जिससे हम अपने जीवन को उन लोगों के संग साझा कर सकें जो अपने को जरूरत की परिस्थिति में पाते हैं। श्रोताओ, आज का पहला पाठ हमारे जीवन में आनंद और प्रेम की निशानी रोटी और दाखरस का जिक्र करता है, जिसे सालेम के राजा और पुरोहित मेलकीसदेक अब्राहम के पास लाते और विश्वास के पिता अब्राहम को अपनी आशीष से भर देते हैं। रोटी और दाखरस यहाँ हमारे लिए अपने मिलन और प्रेम के आदान प्रदान की बात को व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ की पहली पुस्तिका में ही रोटी और दाखरस का यह आदान प्रदान दो व्यक्तियों के बीच के विधान प्रेम के ठोस संबंध को व्यक्त करता है, जहां एक याजक बलिदान अर्पित करते हुए ईश्वर के द्वारा चुने गए दूसरे व्यक्ति पर ईश्वरीय आशीष और कृपा की कामना करता है। अपने लिए अर्पित बलिदान के बदले में अब्राहम अपने सारी संपत्ति का दशमांश पुरोहित मेलकिसदेक को अर्पित करते हैं। श्रोताओं, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ मेलकिसदेक और अब्राहम के बीच हुए आदान प्रदान और उनमें मिली आशीष कृपाओं तथा दशमांश के चढ़ावे को एक कदम आगे ले चलता और उसे यीशु ख्रिस्त के द्वारा मानव के लिए अर्पित प्रेम के बलिदान से संयुक्त करता है। मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त अपनी मृत्यु से पहले सारी मानव जाति के खातिर अपने को रोटी और दाखरस के रूप में अपने को शिष्यों के लिए देते हैं। यह प्रेम के एक अति गूढ़ रहस्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराता है। श्रोताओं, हम अपने प्रेम करने वालों के लिए अपने को सभी रूपों में देने की चाह रखते हैं। हम उनके लिए अपने को पूर्ण रूपेण निछावर कर देने की तमन्ना रखते हैं। एक प्रेमिका अपनी प्रेमिका के संग सभी रूपों में एक हो जाना, यहाँ तक कि अपने जीवन को कुर्बान कर देना, प्रेम की उत्कृष्टता को प्रकट करता है। यीशु ने अपने प्रेम में हमारे लिए यही किया। इसके पहले कि वे क्रूस के बलिदान में अपने प्रेम का साक्ष्य देते, उन्होंने अपने शरीर और लोहू को रोटी और दाखरस के रूप में बदलकर हमें दे दिया, जिसे हम यूखरिस्तीय बलिदान में सहभागी होते हुए अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। एक प्रेमी अपने प्रेमिका के हृदय में सदैव उसके दिल के करीब उसके शरीर का अंग बने रहने की चाह रखता है। हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की चाह हमारे लिए यही है और इसी खातिर उन्होंने हमें अपने को रोटी और दाखरस के रूप में दे दिया है, जिससे वे हमारे संग सदैव रह सकें। इस प्रेम बलिदान को हमें सदैव याद रखने, साथ ही इसे एक यादगारी स्वरूप हमेशा मनाने का आह्वान किया जाता है, जहां हम इस बात की घोषणा करते हैं कि यीशु ख्रिस्त हमारे लिए क्रूस पर मरकर जी उठे हैं। यीशु ख्रिस्त के मुक्तिदायी इस बलिदान को चढ़ाने और उनमें सहभागी होने के द्वारा हम अपने ईश्वर के दशमांश आशीषों और कृपाओं के भागीदार होते हैं। हमारे जीवन का चढ़ावा हमारे लिए ईश्वरीय आशीर्वादों का स्रोत बनता है, जहां हम ईश्वर को सदैव हमारी चिंता और फिक्र करता हुआ पाते हैं। श्रोताओं, आज का सुसमाचार हमारे लिए दो मनोभावों का जिक्र करता है। एक ओर मानवता हेतु यीशु की करुणामय चिंता, तो दूसरी ओर शिष्यों की चिंता, जहां वे अपने को लोगों से दूर करने की चाह रखते हैं। शिष्य चाहते हैं कि यीशु लोगों को विदा करें, जिससे वे स्वयं अपने लिए शारीरिक और भौतिक चीजों का जुगाड़ कर सकें। लेकिन यीशु अपने साथ दिन भर रहने वालों को यूं ही विदा करना नहीं चाहते हैं। यह निश्चित रूप में हमारे लिए यीशु ख्रिस्त के प्रेममय हृदय का हाल प्रस्तुत करता है। यह हमारे लिए उनकी संवेदनशीलता को दिखलाता है कि वे अपने पास आने वालों की किस हद तक चिंता करते और अपनी चिंता में उनके जरूरतों की पूर्ति हेतु पहल करते हैं। श्रोताओं, अपने पास आने वालों को यीशु यूं ही भूखे प्यासे नहीं भेजते हैं। वे हमें मानसिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप में तृप्त करते हैं। यीशु के शरीर और लोहू का महोत्सव आज हमें यही संदेश देता है कि हम जो उनके पास आते और विभिन्न तरह की भूखों और प्यासों से तृप्त किए जाते हैं। यीशु हमें शिष्यों की भांति यही कहते हैं, तुम ही उन्हें खाने को कुछ दो। वे हमें अपनी तरह उद्दार बनने का आह्वान करते हैं, जिससे हम जरूरत में पड़े लोगों को अपनी छोटी सेवा और सहायता दे सकें। आइए हम यीशु ख्रिस्त से उद्दार बनने की कृपा मांगें, जिससे हम कृपाओं के रूप में मिली चीजों को दूसरों के संग बांट सकें, जिससे दूसरे भी हमारे द्वारा जीवन में तृप्ति का अनुभव कर सकें।
यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, हो उधर देता शांति देता अनंत जीवन भी देता, उधर देता शांति देता अनंत जीवन भी देता, हो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। जून का महीना यीशु के पौत्र हृदय की विशेष भक्ति के लिए समर्पित है। इस माह में कलीसिया विश्वासियों का आह्वान करती है कि वे पौत्र हृदय की भक्ति करते हुए अपने हृदय को भी उनके हृदय के समान बनाने की कृपा मांगे। संत पापा ने 18 जून को एक ट्वीट प्रसिद्ध कर कहा, ईश्वर अपने आप को छोटा बनाते हैं एक रोटी के टुकड़े के समान, यही कारण है कि हमें अपना हृदय बड़ा करना है ताकि हम उन्हें पहचान सकें, उनकी आराधना कर सकें और उन्हें ग्रहण कर सकें। संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 18 जून को यीशु के पौत्र हृदय की कुंबोनी मिशनरियों की 19वीं महासभा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से मुलाकात की तथा उनसे कहा कि उनके मिशन का स्रोत, उसकी गतिशीलता और उसके फल पूरी तरह से ख्रिस्त से संयुक्ति एवं पौत्र आत्मा की शक्ति पर निर्भर करता है। महासभा की विषय वस्तु है, मैं दाख लता हूँ तुम डालियां हो, कुंबोनी के साथ ख्रिस्त में निहित। संत पापा ने कहा, वास्तव में मिशन, इसका स्रोत, इसकी गतिशीलता और इसका फल पूरी तरह ख्रिस्त के साथ संयुक्ति एवं पौत्र आत्मा की शक्ति पर निर्भर करता है। यीशु ने अपने शिष्यों से स्पष्ट रूप से कहा था, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या है? हम अपने आप से बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे नया कदम उठाना, कार्यक्रमों का आयोजन करना, आंदोलन चलाना आदि, किंतु यदि हम ख्रिस्त के साथ नहीं है और यदि उनकी आत्मा हमारे साथ नहीं है, तब हम जो कुछ भी करते हैं वह उनकी नजरों में कुछ नहीं के बराबर है, अर्थात ईश्वर के राज्य के लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। इसके विपरीत यदि हम उन डालियों के समान हैं जो दाखलता से जुड़ी रहती है, तब ख्रिस्त का आत्मा हम में निवास करता और हम जो कुछ भी करते हैं वह फल लाता है, क्योंकि यह हमारा कार्य नहीं होता बल्कि ख्रिस्त का प्रेम होता है जो हमारे द्वारा कार्य करता है। यही ख्रिस्त जीवन का रहस्य है और खासकर मिशनरियों का। मिशनरी एक शिष्य है जो अपने प्रभु और स्वामी से इस तरह जुड़ा रहता है कि उसके हाथ, मन और दिल से ख्रिस्त का प्रेम प्रवाहित होता। यीशु जो फल चाहते हैं वह प्रेम का फल है। संत पापा ने यीशु के पौत्र हृदय की कुंबोनी मिशनरियों के संस्थापक संत दानियल कुंबोनी एवं मदर कब्रिनी जैसे महान मिशनरियों का आदर्श प्रस्तुत करते हुए कहा कि उन्होंने अपने मिशन को ख्रिस्त के हृदय से प्रेरित होकर किया। इस प्रेरणा ने उन्हें आगे बढ़ते हुए भौगोलिक सीमा से परे जाने की शक्ति प्रदान की। संत पापा ने कहा कि पौत्र आत्मा की प्यास हमें अपने आप से बाहर निकलने एवं दूसरों की ओर बढ़ने में मदद देती है। तब संत पापा ने यीशु के पौत्र हृदय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके हृदय की विशेषता है करुणावान, सहानुभूति एवं कोमलता। उन्होंने कहा कि धर्म समाज के सदस्य अपने मिशन में ईश्वर के इन्हीं गुणों का साक्ष्य देने के लिए बुलाए गए हैं। यूक्रेन के ग्रीक कैथोलिक कलीसिया में डोनेस्क के धर्माध्यक्ष स्टेफन मानियोक ने कैथोलिकों से आग्रह किया है कि वे पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें डोनबास प्रांत में रूस की क्रूरतापूर्ण बमबारी का सामना करना पड़ रहा है। युद्ध जारी होने के बावजूद वहां पुरोहित लोगों के साथ हैं। यूक्रेन के ग्रीक कैथोलिक कलीसिया के डोनेस्क धर्म प्रांत में पूर्वी डोनेस्क, ज़ापोरिजिया, निप्रो और लुहांस्क क्षेत्र आते हैं।
संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 18 जून को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में सीरो मलाबार युवा नेता सम्मेलन के करीब 75 प्रतिभागियों का अभिवादन किया। संत पापा ने कार्डिनल अलेंचेरी को उनके परिचय भाषण के लिए धन्यवाद दिया, जो यूरोप में प्रवासी भारतीयों के विभिन्न सिरो मलाबार धर्म प्रांतों में प्रेरितिक यात्रा के दौरान युवा नेताओं और पुरोहितों के साथ रोम आए हैं। संत पापा ने कहा, प्रत्येक तीर्थ यात्रा का पहला लक्ष्य प्रभु येसु है, जो स्वयं मार्ग, सत्य और जीवन है। हमारी इच्छा है कि हम उनका अनुसरण करें और उनके प्रेम के पथ पर चलें। प्रेरित संत थॉमस सुसमाचार का बीज बोने के लिए भारत के पश्चिमी तट पर आए और वहां पहला ख्रिस्तीय समुदाय शुरू किया। परंपरा के अनुसार इस वर्ष संत थॉमस की शहादत की 1950वीं वर्षगांठ है। संत पापा ने कहा कि कलीसिया प्रेरितों की गवाही पर स्थापित है और यह धर्मांतरण से नहीं बल्कि गवाही से बढ़ती जा रही है। प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपनी गवाही द्वारा कलीसिया के निर्माण में हिस्सा लेता है। आप भी गवाही देने के लिए बुलाए गए हैं, मुख्य रूप से सिरो मालाबार प्रवास में आपके साथियों के बीच, बल्कि उन लोगों के भी जो आपके समुदाय के नहीं हैं और यहाँ तक कि जो प्रभु येसु को नहीं जानते हैं। संत पापा ने उन्हें हर युग के संतों द्वारा दिए गए प्रेम की साक्षी को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। संत पापा ने कहा कि ख्रिस्तीय धर्म निषेधों की श्रृंखला नहीं है जो खुशी की इच्छा को रोकता है, बल्कि एक जीवन परियोजना में है जो प्रत्येक मानव हृदय में पूर्णता लाने में सक्षम है। सुंदरता या वास्तविक साझाकरण के बिना, निष्ठा और जिम्मेदारी के बिना प्यार की बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ विद्रोह करने से न डरें। जब भी हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को वस्तुओं के रूप में उपयोग करते हैं तो दिल टूट जाते हैं और केवल उदासी और खालीपन रह जाता है। संत पापा ने कहा, लिस्बन में अगले विश्व युवा दिवस का विषय होगा मरिया उठी और शीघ्रता से चल पड़ी। संत पापा ने कहा, स्वर्गदूत द्वारा उद्धारकर्ता की मां बनने का संदेश पाकर मरिया हां कहने के बाद तुरंत अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ से मिलने गई। मरियम ने अपने बारे, अपनी कठिनाइयों के बारे में नहीं सोचा। मरियम अपने आप को अभिमान या भय से पंगु नहीं होने दिया। वह उन लोगों में से नहीं थी जिनके लिए आरामदायक और सुरक्षित रहने के लिए केवल एक सोफा होना चाहिए। संत पापा ने कहा, आप भी मरियम के समान अपने बुजुर्ग दादा दादियों, अपनी जड़ों का पता लगाएं और उनसे मिलने जाएं और उन लोगों के अनुभवों को सुनें। बुजुर्गों के पास स्मृति और ज्ञान होता है। और संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार को धर्मशास्त्रीय पत्रिका की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर ला स्कुओला कैथोलिका के संपादकीय बोर्ड के सदस्यों को दिए गए एक संबोधन में धर्मशास्त्र के स्कूलों के मिशन और धार्मिक पत्रिकाओं की भूमिका पर विचार किया। अपनी लिखित टिप्पणियों में संत पापा फ्रांसिस ने प्रकाशन का वर्णन किया जो मिलान धर्म प्रांत के सेमिनरी से जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।